गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
तो ऐसे हमने ऑर्डर बनाना पड़ेगा कि ऐसी अमृता वर्षा हो रही और नींद आवे, ये भी एक काल का भयंकर जाल है। ऐसा बढ़िया मौसम, ना गर्मी है ना सर्दी है, हैं ऊपर परमात्मा की दया है, पंखे चल रहे हैं और अमृत वर्षा हो रही है। तो ध्यान से सुनो इस परमात्मा की प्यारी वाणी को। ये को बालकों का खेल नहीं, इतनी व्यवस्था कराया कि भक्तों ने आपके लिए कितना बड़ा सेट बनाया है, ऊपर पंखे लाकर दर दिए, 2 महीने 1.5 के अंदर सबके में जचा कर रख दिया परमात्मा कबीर जी की दया से। इसीलिए कि प्यारी आत्मा यहाँ आएंगी, परमात्मा का ज्ञान सुनेंगी, अपने भगवान को पहचान के यहाँ से कल्याण करवा जाएंगी। कितना पुण्य होगा उन पुण्य आत्माओं ने जिन्होंने इसमें सहयोग दिया सेट बनाने में, यहाँ सारी व्यवस्था बनाने में, तो उसका लाभ आपने पूर्ण उठाना है। तो ध्यान से सुना करो, एक बच्चा 16 वर्ष पढ़ता है लगातार, वही पुस्तक होती है, वही ज्ञान होता है मिलता जुलता, और तब कितने पेट रोजी रोटी नौकरी का उसका जुगाड़ बनता है। और इसी प्रकार आप जी को ये दास यहाँ ट्यूशन पढ़ा रहा है, ये समझ लो ये स्कूल समझ लो, और यहाँ महीने में 6 दिन 3 दिन दो सत्संग हम करते हैं 3-3 दिन के, इसमें एकाधे को अटेंड जरूर कर लिया करो, इससे में आपका काम बढ़ जाएगा। अपना धंधा भी करो लेकिन ये ज्ञान बहुत ध्यान सावधानी से सुनो। अब ये पवित्र पुराण अपने घर पर रखी हुआ रखी रहती थी, पढ़ते भी थे, पढ़ने लगते इतने पता नहीं क्यों 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 के अगला पढ़ते इतने पिछला भूल लेते, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा करती। अब परमात्मा ने इसी दया कर दी, बाईपास काट दी, जो हमने आवश्यक वस्तु है वो पढ़ लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो जड़ी जैसे जंगल होता है वन, उस वन में तो वैद वो जड़ी तो सारी है ठीक से, लेकिन जो उसने औषधि के लिए चाहिए अपनी, वो औषधि से के लिए वो जड़ी निकाल लाता है और दवाई बना देता है, रोग काट देता है। तो दास ने वो औषधि निकाल ली, वो जड़ी निकाल ली और औषधि कूट कर बना ली। आपको उसका प्रमाण दे रहा हूं कि कहां से निकाल ली वो जड़ी, ये देखना। श्रीमद देवी भागवत वही है, अभी आपको दिखाई थी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी इसके संपादक हैं। अब आपको क्या सुनाना चाहता है ये दास, इसी 3rd स्कंद में पहले आपको मौखिक बताता हूं कि बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। जन्मे जे कौन थे, ये अभिमन्यु के पौत्र थे, राजा परीक्षित के पुत्र। तो जन्मे जे ने व्यास जी से पूछा कि हे भगवान, इस ब्रह्मांड की रचना किसने की? कोई तो कहता विष्णु ने की, कोई कह शंकर ने की, कोई कह फलाने ने की, विष्णु ने की, कोई ब्रह्मा का नाम लेता है। ए ऋषि जी मुझे क्लियर करके बताओ कि कौन देव पूज्य है और इस ब्रह्मांड की रचना किसने की। तो व्यास जी ने कहा कि राजन जो बात आपने पूछी ना इसी विषय में मैंने नारद जी से पूछी थी। तो नारद जी ने कहा व्यास जी जो तुम प्रश्न कर रहे हो कि ये ब्रह्मांड की रचना किसने की और ये इसी विषय में मैंने नारद जी कहता मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछी थी वो बता रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले अब उसको आपको सुनाते हैं कि वो क्या बताया कि क्या है इसमें लिखा है कि ऊपर जो है एक ये ब्रह्मांड है इस ब्रह्मांड के सोपरी स्थान पर जैसे आपने शिवपुराण में पढ़ा कि वहां ऊपर स्थान पर शिव और काल ने एक गुप्त स्थान बना रखा है उसने काशी कह लिया उसी काशी का नकली नाम उसके आधार पर नाम ये पृथ्वी पर भारत में बनारस का रखा हुआ है। ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र ये ब्रह्मांड समझने के बाद फिर आपका या देवी प्राण सुन माओगे ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है ये एक ब्रह्मांड है ये इसमें क्या है कि ये एक अंडे के शेप में है एलिपिकल शेप है इसकी ये ऐसे ये पूरा ब्रह्मांड और इसमें नीचे ये अतल उतल ततला तल रसतर और ये पाताल ये सात लोक नीचे के हैं अतल सुतल महातल पीतल तलातल और पाताल ये पृथ्वी और ये स्वर्ग ये अलग ये स्थान ऊपर है और ये विष्णु शिव जी का लोक ब्रह्मा का लोक और विष्णु जी का लोक ये अलग है और ये जो स्थान है इसको ब्रह्म लोक कहते हैं ये सारा ब्रह्म लोक है ये यहां से लेकर यहां तक इस ब्रह्म लोक को भी इस काल ने डिवाइड कर रखा है इसमें नकली सतलोक ये देख एक तो महाइंद्र का द्वीप बना दिया इस तो ऊपर नकली सतलोक नकली अलकलोक नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना की इसी के ऊपर इसने ये तीन स्थान गुप्त बना रखे हैं ये तो रजोगुण प्रधान क्षेत्र है ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है और ये काल यहां मां ब्रह्मा रूप में रहता है और दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है और ये यहां एक ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है ये स्वयं शिव रूप धारण कर लेता है इस रूप में और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है और ये एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है इसमें ये महाविष्णु रूप में स्वयं रहता है दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। तो जब ये अब ये जो सावित्री और ब्रह्मा रूप में यहां रहते हैं इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ब्रह्मा जैसी सकल का हो जाता है उसका नाम भी वो ब्रह्मा रख देते हैं और वो रजोगुण युक्त हो जाता है और फिर ये दूसरे नंबर पर सतोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों पति पत्नी रूप में रहते हैं ये विष्णु रूप धारण कर लेता है। तो इस लक्ष्मी के संयोग से जो तो पुत्र उत्पन्न होता है वो विष्णु जैसा ही हो जाता है इस रूप का हो जाता है उसका विष्णु नाम रख देते हैं। और यहां जो तमोगुण प्रधान क्षेत्र में ये काल शिव रूप धारण कर लेता है ऐसा और पार्वती को दुर्गा को पार्वती रूप बना लेता है तो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो इसी की रूप का हो जाता है और उसको शिव नाम रख देता है महेश्वर और वो तमोगुण युक्त होता है। अब जैसे अर्य दुर्गा का अलग लोक है ये यहां रह करके नीचे के सब ब्रह्मांडों को संचालन करती है और ये कभी किसी के सामने अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आता इसका असली रूप और है। अब ये सतोगुण रजोगुण प्रधान क्षेत्र ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र कैसे है और इसी में परमात्मा कबीर जी का भी अपना एक अलग लोक है। जैसे राजदूत भवन होते हैं प्रत्येक देश का प्रत्येक देश में तो यहां परमात्मा ऐसे स्थान पर है ये ना इस काल को पता ये कहां रहते हैं इधर कोई नहीं जा सकता ये प्रभु की रचना है कृपा है कबीर जी की यहां एक ऐसा स्थान है परमात्मा यहां अन्य रूप में रहते हैं। अब हमने ये समझना है कि जैसे एक मकान में तीन कक्ष हों, एक कमरे में कक्ष में इन अश्लील चित्र लगे हों, अर्धनग्न शरीर हों, उसमें जब जाएगा मन तो उसके अंदर कोरा बकवाद उत्पन्न हो जाएंगी और जब तक वहां रहेगा उसके अंदर बहुत ही उत्तेजना बनी रहेगी। ऐसे ही दूसरे कक्ष में लगे हों साधु संत फकीरों के चित्र, वहां जाते ही मन शांत हो जाता है, उनकी लीला को परिचित होता है और एकदम परमात्मा की भक्ति करने को मन चाहने लग जाता है, ऐसा स्वभाव बन जाता है। और तीसरा हो सूरवीर शहीदों का के चित्र लगे हों क्रांतिकारियों के, तो वहां उनको उनकी लीलाएं देखकर उनके चेहरे देखकर उस वैसा ही मन हो जाता। तो ऐसे ही ये काल, इस काल ने ऊपर तीन स्थान बना रखे और जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहता है, दुर्गा को वहां साथ रखता है, पति पत्नी व्यवहार में रहते हैं, तो वहां ये चार पांच मुख लगा लेता है और वैसा ही पुत्र उत्पन्न हो जाता है और रजोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम ब्रह्मा रख देता है। और जब वो सतोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं उससे वहां उनके विष्णु रूप धारण कर लेता है, तो उनसे उत्पन्न पुत्र भी विष्णु जैसा ही उसी जैसा यानी विष्णु बन एक जैसा रूप हो जाता है, उसका नाम विष्णु और सतोगुण हो जाता है रख देते हैं। ऐसे ही तमोगुण प्रधान क्षेत्र में ये होते हैं, तो इन तीनों उस ये शिवजी रूप में होता है, फिर नागनु गुड़े मर जटा वटा बना बढ़ा कर ऐसे हो जाता है, तो वो पुत्र भी इसी के रूप का उत्पन्न हो जाता है। फिर ये बचपन से ही इनको अचेत कर देते हैं, जैसे कोमा में होता है ना कोई प्राणी, उसका खाना भी खिलाते रहते हैं और वो जीवित भी रहता है, पड़ा रहता है बेशुद्ध, ऐसे ही रहते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं तो तीनों को फिर सचेत कर देता है, कर देती है, और दुर्गा फिर इनको ऊपर के नजारे दिखाती है। ये वर्णन है इस श्री मध्यायी भागवत में, ये पांच मिनट का सत्संग ध्यान से सुनो। अब श्रीमद देवी भागवत तीसरा स्कंध, और ये प्रथम अध्याय है, तीसरे स्कंध का प्रथम अध्याय है। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने अंबा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं, अंबा यज्ञ किस प्रकार होता है, उसका कैसा स्वरूप है और क्या विधान है। दयानिधे आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं और विधिवत सब वर्णन करने की कृपा कीजिए ब्रह्मन, साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ भी कहा गया है वह जैसा जो है वे सब बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये तीन सगुण देवता हैं, कर्म से सृष्टि पालन और संहार कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पाराशर नंदन यानी ये पाराशर के बेटे व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं, आप बतलाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है, अभी तुमने जो पूछा कि ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति कैसे हुई यानी ब्रह्मा आदि माने ब्रह्मा विष्णु महेश की, सो महान कठिन विषय है, उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं, यही प्रश्न पुरुष में मैंने नारद जी से किया था। मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है, मुनिवर यह ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हो गया, दीर्घवर साथ यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला, इसकी रचना ये देखिए 114 पृष्ठ पे, करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता हैं। कर्ता के अभाव में कार्य का होना असंभव है, यह प्रश्न मेरे मन में उठता रहता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं देवादि देव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म मरण और मरण नहीं होता, वे आत्मा मरमण करने वाले हैं, देवताओं पर भी उनका शासन बना रहता है, तीनों गुण रहते हुए भी उनमें से वे निर्लिप्त रहते हैं, वे संसार रूपी सागर से उद्गार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, अतः वह सृष्टि सत्य और संहार के अधिकार। दूसरे कई लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं, वे शक्तिशाली पुरुष हैं, अव्यक्त अखिल ऐश्वर्य संपन्न परम ब्रह्म परमात्मा हैं, उनकी कृपा से भक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ हो जाती हैं, वे शांत स्वरूप हैं, सभी और उनका मुख है, वे व्यापक पुरुष हैं, विश्व के शरण देने का स्वभाव ही है उनका स्वभाव, ये कभी जन्म होते और मरते नहीं। कुछ दूसरे लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि प्रधान कारण बताते हैं, सृष्टि का प्रधान कारण बताते हैं, और कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं, वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति हैं। दुर्गा को यहां भी प्रकृति का है, ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है, काल के साथ वो पति पत्नी रूप में रहते हैं, वे सृष्टि सत्यति और संहार कार्यों में संलग्न रहती है, संपूर्ण प्राणियों एवं देवताओं की भी जननी है, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वैष्णवी सांभवी ब्राह्मी स्वासवी वारुणी ब्राही नरसिंह नारसिंही अर्थात तथाद्भुत महालक्ष्मी नाम से विख्यात है। कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन निराकार निर्लेप निर्गुण अरूप एवं व्यापक ब्रह्म हैं, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई। कहीं कहीं वेद और उपनिषद में वे ही ब्रह्म तेजो में बतलाए गए हैं, वे प्रधान पुरुष हैं, हजारों मस्तक हजारों आंखें कान मुख आदि ये सब बात स्पष्ट रूप से कही गई है। विद्वान पुरुष शांत निरंजन विराट पुरुष को ही प्रधान बताते हैं। कुछ दूसरे प्राचीन रहस्य जानकर लोगों ने पुरुषोत्तम कहते हैं। अब क्या कहते हैं 115 पृष्ठ पर नारद जी कहता है, तीसरा स्कंद चल रहा है, ये तीसरा स्कंद नारद जी कहते हैं व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था, तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस विषय में जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा पिताजी यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुआ है, विभो आपने सम्यक रूप प्रकार से इसकी रचना की है अथवा विष्णु इसके रचयिता है या शंकर ने इनकी सृष्टि की है। जगत प्रभो आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करें। अब पता था नारद ने के पिताजी जब भी चढ़ जाएगा झूठ बोलेगा, तो कहते सच्ची बात बताने की कृपा करें, किन देवता की पूजा करनी चाहिए यानी किस भगवान की तथा तो कौन देवता सबसे बड़े एवं सर्व समर्थ है। निष्पाप ब्रह्मा जी इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। सत्यवती नंदन व्यास जी, अब नारद जी कह रहे हैं व्यास जी को कि इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पिता में ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है, महाभाग तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। हर आगे देखिए विष्णु जी अचेत पड़े, उसके नाम अपनी वेरा कितना पैदा हो गया। महामते इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे यह रहस्य विदित हो, जो त्यागी अहंकार रहित और ईर्ष्या शून्य है वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में फिर भी वो बता रहा है ब्रह्मा, पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगम जितने प्राणी में कोई भी नहीं था थे, तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, उस समय संपूर्ण मुझे सूर्य चंद्रमा वृक्ष पर्वत आदि कोई भी दिखाई नहीं दिए, आदि कोई भी दिखाई नहीं दिए, मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि अनुसार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष है, कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है, यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ। यो विचार करके ब्रह्मा जी बता रहा है, कब करके मैं जल में उतरा, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला, इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो, तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी, कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक तप करता रहा, फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया, सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधुर कैटब नाम के दो भयंकर दानव सामने आ गए, वे उस महावर्ण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे, मैं उनसे भयभीत हो उठा, तब कमल का डंठल पकड़कर उस जल में उतरा, वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले, उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था, पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेष नाग की सैया पर सोए थे, बेहोश पड़ा था, भी सुनो, उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी शंख चक्र गदा पद्म, इन 4 आयुधों से सुशोभित हो रहे थे, अनुप शोभा पा रहे थे, ऐसे शेष साई भगवान विष्णु के मुझे दर्शन हुआ, वे योग निंद्रा के वसीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे, उनकी सारी चेष्टाएं शांति, बेहोश पड़ा था विष्णु, नारद जी शेष नाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। ब्रह्मा बता रहे वे, इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई, मैंने उनका सत्वन किया, तब वे कल्याणमयी भगवती यानी दुर्गा भूतनी की तरह अन्य रूप बनाकर विष्णु में प्रवेश करके बेहोश कर रही थी, तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह यानी शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई, दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निंद्रा या दुर्गा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे, उन्होंने मधुर कैटब के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमासान लड़ाई की, तब वे दैत्य मरे, पहले देवी के कटाक्ष से मधुर कैटब मोहित हो गए थे, इसके बाद भगवान विष्णु ने उनको गोद में लिटाकर उन्हें वहीं प्राण रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु दो थे, वहीं पर ये रुद्र ये महेश काल का तीसरा बेटा भी आ गया, प्रकट हो गया, अब तीनों को इकट्ठा कर दिया काल ने प्रेरणा करके, अब हम तीनों को भगवती अध्या यानी इस दुर्गा के शक्ति के दर्शन हुए, उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया, हमने उनकी उत्तम स्तुति की, तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। दुर्गा बोली, देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ, सृष्टि स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती अध्या शक्ति की वह वाणी बड़ी ही मधुर थी, बड़ी वाणी बड़ी मधुर सुंदर एवं सुखप्रद थी, हमने वह स्पष्ट सुनी, हम लोगों ने उनसे कहा, माता हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों, विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है, हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतराया, ये काल का जाल था, यो आप सामने नहीं आता, सब गुप्त काम करता है, तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र आज मैं तुम्हें अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया, उस रत्न जड़ित विमान पर बैठ चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। हम तीनों देवताओं को ऊपर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा, अद्भुत चार द्वारी थी, उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे, उचित स्थान पर यज्ञशाला बनी थी। अक्षण भर के बाद ही वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था, पारिजात की संगन छाया के नीचे सुर भी गौ बैठी थी। अब पास में ही एरावत हाथी विराजमान था, सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते विहार करते थे। देखा तो वही महाभाग इंद्र भी थे, उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए। 118 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव धाम यानी ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा जी विराजमान थे, वहां दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर शंकर, भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानंद, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं, सृष्टि के अधिष्ठा था, ये कौन है भगवान, मैं कौन हूं और ये कौन है, हमारा क्या उद्देश्य है, इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वर्ष पर बैठे थे, उनके पांच मुख थे। यु काल है, सारी लीला खेल कर रहे हैं। 10 भुजाएं थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। अक्षण भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और वैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विशाल भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे, यानी एक विष्णु और था। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीताम्बर पहने थे, चार भुजाए थे और पक्षी राजगरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी शोभा अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिय लक्ष्मी चमन ढुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के से रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान के एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था। हम अपने मतलब की चीज लेंगे, फटाफट समझ में आ जाए। 119 पृष्ठ पर हम चल रहे हैं। एक मनोहर द्वीप था। उस द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही थी। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे, करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। दुर्गा ने और रूप बना लिया गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे। आपस में कहने लगे, ये सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख आदि आदि देखने में नारद यूं संदेह ग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारों साहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया। काल ने विष्णु की बुद्धि खोल दी कि ये भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी के आदि कारण है, महाविद्या महामाया इनके नाम है, ये पूर्ण प्रकृति है। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये भागवत 120 पृष्ठ पे तोड़ पाड़ रखे यहाँ पर। ये वे ही दीवांगना है, विष्णु जी कह रहे हैं ये वे ही दीवांगना है जिनके प्रलय वर्ण में, यानी जब जल ही जल था, जब प्रलय हो रही थी, मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था, विष्णु जी बोल रहे हैं, मुझे पालने में जुला रही थी। वट वृक्ष के पत्र पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई, ये हम सबकी जननी है। अरे वाह वाह, भगवान विष्णु बोले, प्रकृति देवी को नमस्कार है, भगवती विद्यात्री को निरंतर नमस्कार है। अब यहां आ जाते हैं, हम ज्यादा ना पढ़कर। क्या कहते हैं माता, 122 पृष्ठ पे, अब 123 पे एंड होगा इसका। माता, जब मैं शंकर और ब्रह्मा भी तुम्हारे अचिंत प्रभाव से अपरिचित हैं, तब दूसरा कौन है जो उसे जान सके। तुम्हारे बनाए हुए जितने भवन हैं, तुम्हारे इस शक्ति संपन्न नख दर्पण में हमने उनकी झांकी मिल गई। देवी, हमने इस लोक में दूसरे ब्रह्मा विष्णु शंकर देखे, सब में वैसे ही असीम शक्ति थी, क्या अन्य लोकों में ये नहीं है। देवी, तुम्हारे इस फैले हुए अचिंत ऐश्वर्य को हम कैसे जाने। अब विष्णु जी अपनी माता की महिमा गा रहा है दुर्गा की, 123 पृष्ठ पे है, वो आ गया जो पहले आपको सुना था, तीसरा स्कंद है। अब विष्णु जी कह रहा है कि मैं बालक था तो आपको देखा था, और क्या कहता, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हें से उद्वासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव मन जन्म, त्रोभाव मन मृत्यु होता है, हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर थे। अब ये इनकी पूर्ण हिस्ट्री है। आपको ब्रह्मांड का एक चित्र दिखा, दुर्गा ने इनको जब ये युवा हो लिए, एक जगह पर इकट्ठा कर लिया, विमान में बैठा दिया, इनकी फड़क निकालने के लिए कदैये फिर बाद मांडी पाक जा ऊपर दिखाया, एक ब्रह्मा और देखे, यु काल बैठा महावीर ब्रह्मा रूप में, ये साथ नहीं थी, ये खुद पहुंच गई वहां काल के पास, जिस लोक में ये जा वो ब्रह्मा रूप धारण कर लिया, शावतिक रूप में बैठ जा। जब ये दूसरे सतोगुण प्रधान क्षेत्र में गए, वहां दूसरा काल ने विष्णु रूप धारण कर लिया और दुर्गा ने महालक्ष्मी लक्ष्मी रूप, और जब तीसरे में गए तो वहां शंकर, इसने शिवजी रूप धारण कर लिया और पार्वती रूप बना लिया दुर्गा ने। इन तीनों के ऐसे ये दिखा दिया कि तुमसे और भी शक्तिशाली ऊपर और शक्तियां हैं। फिर आगे विमान गया, ऊपर इंद्र का लोक देखा, फिर ब्रह्म लोक में प्रवेश कर गया, ब्रह्म लोक से भी ऊपर निकाल दिया। तो ऐसे फिर ये दुर्गा के पास आए, वहां फिर इन्हें देखा, विष्णु को चेतना दे दी काल ने, इसका याद आ गया था अपनी माँ है, मैं छोटा सा बालक था, अंगूठे पैर के चूस रहा था, यह मुझे जुला रही थी। तो पुण्यात्माओं, ये सारा कुछ परमात्मा ने उस विवेकानंद से कहा। उस दुष्ट आत्मा ने परमात्मा की आंखों देखकर भी बात को स्वीकार नहीं किया, मान बढ़ाई रोजी रोटी के लिए। उल्टे कबीर जी से कहा कि तूने तिलक कैसे लगा रखा है, तूने कहीं नाम ले रखा है, तूने कोई गुरु धारण किया है, तू कौन जाति से है। तो वहां परिचित थे, अन्य लोग कहने लगे, श्रोता लोग कहने लगे, ये तो धारणक का बेटा है, दुलाहे का बेटा है। तो विवेकानंद ने कहा कि तूने कोई गुरु बना रखा है, तूने शास्त्रों का ज्ञान कैसे हो गया है, और ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये झूठ बोलता है, तू कैसे जान सकता शास्त्रों को, तू अनपढ़ है, गंवार है, तुझे अक्षर ज्ञान नहीं है, तूने कौन गुरु बना रखा है। कबीर साहब ने कहा कि जो गुरु तूने बना रखा, मैंने भी वही बना रखा है। पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले ये छुआछात चरम सीमा पर थी, और एक सूदर का लड़का, जुलाहे का, धानक का लड़का, न्यू कह मैंने रामानंद जी को गुरु बना रखा ब्राह्मण को, आग लग जाती थी, विवेकानंद का आनंद का आग लग गई। उस सत्य से हटाकर जनता से वह बैठे श्रोताओं से कहने लगा, देखो कितना झूठा है, पाखंडी है, ये क्या जाने सदग्रंथों को, ये झूठ बोल रहा है कि इसने हमारे गुरु रामानंद जी से उपदेश ले रखा है। रामानंद जी तो छोटी जाति वालों को उसके कपड़े भी नहीं छूने देते, और ये कहता मैंने उपदेश ले रखा है, देखो लोगों कितना झूठा है, देखना कल आना और इसकी सारी पोल खोलेंगे। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर परमेश्वर, अपनी प्यारी आत्माओं को मोक्ष मार्ग बताने के लिए, यथार्थ ज्ञान देने के लिए अपने सतलोक से चलकर आते हैं, और काल के द्वारा फैलाए गए अज्ञान को अपनी कबीर वाणी के द्वारा, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, दोहालियों से के माध्यम से वो तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। उसी के संदर्भ में ये सत्संग चल रहा है। कल आप जी ने सुना कि परमात्मा इस कलयुग में सन 1398 विक्रमी संवत 1455 में प्रगट हुए, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उत्तरते की पूर्णवासी को। उसके बाद लीला में एक बालक रूप धारण किया, लीला में शरीर दिखाते हुए, लीला में लीला करते हुए जब वो 5 वर्ष के हुए, उसी समय से अपने उद्देश्य, जिस उद्देश्य को लेकर आए थे उसमें वो लग गए, ज्ञान प्रचार। कल आपने सुना कि एक महर्षि रामानंद जी जो बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक ब्राह्मण था, बहुत ही सुप्रसिद्ध हो चुका था, वेदों और गीता पुराणों का मर्मज्ञ ज्ञाता माना जाता था, उसने 1400 ऋषि प्रचारक बना रखे थे, उनको आदेश दे रखा था, उनके क्षेत्र बांट रखे थे कि तुम यहां यहां प्रचार करो, और वो स्वयं भी जगह जगह जाकर के अपने प्रचार किया करते थे। कल आपने सुना कि उन्हीं में से एक विवेकानंद नाम का ऋषि, जो रामानंद जी के शिष्य थे, वो अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे, सैकड़ों भक्त वहां विराजमान थे, श्रद्धालु वहां बैठे थे। उसने भगवान विष्णु को सर्वेश्वर महेश्वर बताया, मृत्युंजय बताया, उसके माता पिता कोई नहीं। तब परमात्मा ने उसको कहा, उस ब्राह्मण को, कि स्वामी जी आप कह रहे हो कि विष्णु जी अजर अमर हैं, इनके माता पिता नहीं है, इनकी जीवनी में लिखा है कि इनके माता पिता है, दुर्गा इनकी माता है, और ये सदाशिव काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, आंखों देखकर भी वो मान बढ़ाई का भूखा, आंखों देखकर भी विवेकानंद नहीं माना। परमात्मा कहते हैं कि राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्षा, और दुर्लभ तजनाई। जब तक मान बढ़ाई ईर्षा नहीं छूटेगी परमात्मा नहीं मिल सकते। हमारे अंदर वो दोष विद्यमान है, इसलिए उसने परमात्मा के विचार को स्वीकार ना करके कबीर जी के पीछे पड़ गया। कबीर जी उसमें 5 वर्ष की आयु के थे और तिलक लगा रखा था, जैसे रामानंद जी के उपदेशी लगाते थे। विवेकानंद ने वो सच्चाई तो बुला दी, जनता को अपना ध्यान बांटने के लिए कहीं तेरी पोल ना खुल जा, इसलिए प्रश्न किया कि तेरा गुरु कौन है कबीर, तू कौन है, किस जाति से है, कहां से आया है। उन श्रोताओं में से किसी ने कहा कि जी ये तो धानक का लड़का है, जुलाहे का बेटा है, नीरू का, और उनको वहां एक तालाब पर पड़ा पाया था, वो है। और विवेकानंद जी ने पूछा कि हे कबीर जी, आपके कोई गुरु है? अखान जी, जो गुरु जी आपका है वही गुरु जी मेरा है। तो विवेकानंद जी ने इस बात को बहुत गहराई से लिया, कहने लगा देखो भाई ये कितना झूठा है, श्रोताओं देखो कितना झूठा है, ये कहता है कि मैंने स्वामी रामानंद जी से उपदेश ले रखा है। स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण हैं और ये शूद्र वर्ण से है, हमारे स्वामी जी शूद्र वर्ण वालों के तो अपना कपड़ा भी नहीं लगने देते, आशीर्वाद वो नहीं देते, ना वो नाम देते हैं, वो केवल ब्राह्मणों को उपदेश देते हैं। देखो देखो तुम्हारे सामने कितना झूठा है, इसलिए झूठ बोल रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु जी के माता पिता भी हैं, ये झूठा है, कहीं नहीं लिखा पुराण में ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, मैं रोज पढ़ता हूं। अब विवेकानंद जी ने कहा कि भाई देखना, मैं गुरु जी को बताऊंगा ये सब बातें कि एक धानक का लड़का, एक जुलाहे का शूद्र जाति से लड़का है, आप जी को गुरु बताता है, और देखना इसकी पिटाई होगी, तुम सभी आना कल वहां स्वामी जी के आश्रम में। उसने हजारों की संख्या में वहां एकत्रित कर लिए। अगले दिन हजारों की संख्या में सबको कहा कि तुम सभी वहां आना, देखना ये कितना झूठा है। उधर से कबीर जी अपने घर चले गए, अपनी झोपड़ी में चले गए। सुबह सुबह विवेकानंद वो ब्राह्मण 8-9-10 मस्टंडे लेकर, और उसने जाकर के स्वामी जी से कहा, रामानंद जी से, कि हे स्वामी जी, हमारी तो नाक कटगी, एक जुलाहे का बच्चा, एक धानक का लड़का, आप जी को गुरु बताता है, स्वामी जी अब कैसे प्रचार करूंगा, मेरी तो नाक काट दी, सैकड़ों की संख्या में वहां श्रद्धालु थे, सबके सामने ऐसा बोला वो। तो स्वामी जी ने जब ये सुना, रामानंद जी कहते हैं नो कुद जैसे मृग कुद्या करे, जंप करे, नो कह झूठा है वो, कपटी है, मैं कभी छोटी जाति वालों को नाम नहीं देता हूं, कल जाओ उसको पकड़कर मेरे सामने, सबके सामने मैं पूछूंगा उससे। अपने आत्मा 600 वर्ष पहले ये जाति, ये छुआछात चरम सीमा पर थी, और उस समय ये कहना है ब्राह्मण को कि मैंने उसे नाम दे रखा है, तो वो अपनी कति बुरी इंसल्ट मानते थे बहुत ज्यादा। इसी उद्देश्य से रामानंद जी ने कहा कि कल लाओ पकड़ के उसको सुबह सुबह। अब विवेकानंद 10 मस्टंडे लेकर गया, वो कबीर जी का घर पूछ रहा था, नीरू का घर, वहां पर एक बहन ने ये सुन लिया कि ये नीरू का घर पूछ रहे हैं, और वो उधर ही जा रही थी उनके घर की तरफ, उसने जाके बताया कि नीमा आज 8-10 ब्राह्मण आ रहे हैं, हाथों में छोटे डंडे ले रखे उन्होंने, तुम्हारा घर पूछ रहे हैं, कोई झगड़ा हो गया क्या तुम्हारा उनके साथ? अब नीमा समझ गई कि कबीर ने कोई ना कोई शरारत करी है, ये किन ब्राह्मणा ने छेड़ा है। परमात्मा कई बार जाते थे, ऐसे प्रश्न कर देते थे अज्ञानियों के पास सामने, ऋषि मह ऋषियों के आगे, तो वो उल्हाना लेकर आया करते थे, उल्हाना भेजते थे कि भी उसको मना कह दो, अपने पुत्र को रोक ले, वो सत्संग में भंग डालता है, वो बकवाद करता है, हमारे देवताओं के बारे में उल्ट सुलट बोलता है। तो नीमा ने सोचा यू अवश्य कल फिर किसी ने किसी को छेड़काया है और वही आ रहे हैं। तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तूने किसको क्या कह दिया, कई व्यक्ति आ रहे हैं, डंडे लेकर आ रहे हैं यहां। कबीर परमात्मा कहने लगे, मां सच कहूं तो जग मारे और झूठ कही ना जाइयो, और सच ना पूरा पावते ये झूठा जगपति आई हो। तो क्या कहता था जब वो लाने आते थे, तो मां उसको समझाया करती, बेटा तू इन्हें मत छेड़ा करे, ये कसाई है बेटा, तो ना मार देंगे और हम फिर कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा बेटा। तो परमात्मा कहा करते थे कि ये सब जो है ना, ये झूठे हैं माता जी, ये झूठे हैं सब, इनके पास ज्ञान नहीं है, ये दुनिया को बहका रहे हैं, ये सभी मेरी आत्मा है, मेरे बच्चे हैं, मैं इनको यथार्थ ज्ञान देना चाहता हूं। तो मां धमकाया करती, तू दादा मत पकड़, ये तेरे बेटे हैं, दो दो अंगल का तू सारे अपने बेटे बताओ, बच्चे बताओ, पढ़ा रहा कर, बकवाद ना करा कर, तुम्हें गट दूंगी। अब चुप हो जाता माता जी जब धमकाती, आज फिर वही समस्या खड़ी होगी। अब माता कहने लगी, तू खड़ा हो यहां से, चार पाई सिर पीछे मर, झोपड़ी का पीछे डाल दिया, परमात्मा को लिटा दिया, 5 वर्ष के बालक को ऊपर गुदड़ का भी डाल दिए, अपने फटे पुराने कपड़े, जैसे कोई गदला था, कोई फटी पुरानी रजाई थी। बेटा बोलिए मत, तू ये यहां ढूंढ ढांड कर चले जाओगे, हम कह देंगे तो बाहर जा रहे हैं, और तू बोलिए मत ना, आज तो तने मारेंगे ये गणे, कई जने आ रहे बताओ। इतने में वो आगे मस्टंडे, माता ने पीछे झोपड़ी के पीछे छुपा दिया कबीर परमेश्वर को। इतने में वो विवेकानंद का टोल सामने आ गया और कहने लगा, कहां तेरा बेटा, वो तेरा बेटा कहां है कबीर। तो माता कहने लगी, क्या बात है स्वामी जी, क्या बात है विपर, क्या क्या कर दिया मेरे बेटे ने, कि वहां पता चलेगा स्वामी जी के पास, रामानंद जी के पास, इसने क्या कर दिया, इसका घना मुंह उठ रहा, तुम इसको मना नहीं करते, रोकते नहीं, तुमने छोड़ रखा इसको खुला, कहां है वो। इतना करते कहते झोंपड़ी में घुस गए, लागे ढूंढन, खाटती वो चारपाई पटक दी, कपड़े थे वो ठाठा का पटक दिए, एक तरफ गेर दिए, बुरा हाल मचा दिया, और जोर जोर से बोल रहे हैं, कहां है वो तेरा बेटा, पता नहीं तेरे डंडे मारेंगे उसकी। मुंह बोली माता को, परमात्मा की मुंह बोली माता से ऐसे कह रहे थे। तो परमात्मा ने सोचा, ये मेरी माता पिता, मुंह बोले माता पिता, उनके कोई माता पिता नहीं थे परमात्मा के, वो तो एक लीला थी कि इन बुढ़ा बुढ़ी यानी दुखी करेंगे। तो बाहर अपने हटा के वो रजाई रजोई ऊपर से और झोपड़ी के पीछे खड़े हो गए और कहने लगे, विवेकानंद मैं झोपड़ी के पीछे खड़ा हूं, पीछे देखिए यहां हूं मैं। अब उन आवाज सुनी भाग के पीछे गए, उन्होंने पकड़ ली बा और लेकर चलने लगे, तो मां चिपट गई उस अपने बालक के, मेरे बच्चे को छोड़ दो, उन मस्टंडा ने ला तुम्हारी मुक्के मारे। मां ने उनका हाथ पकड़ लिया जो सा कबीर जी को पकड़ रहे थे, उसके लटक कर चलती रही काफी देर, घसीट ले गए दूर, लात मार मार के अपना हाथ छुटवा लिया, डंडे मारे और अचेत करके डाल लिए उस मां को। इतने में नीरू ने झगड़ा सुना, वो भाग्य आया, वो भी कबीर जी को छुटवाने लगे अपने बच्चे को, उसको भी उन मस्टंडा ने काफी लठ मारे, अधमरा करके वहां छोड़ गए, कबीर जी को ले गए। कॉलोनी वालों ने आकर के उन दोनों को अंदर रख अपने झोपड़ी में डाला, उनको फर्स्ट एड की, काफी चोट लगा दी थी, काफी देर में वो होश में आई बेचारी नीमा। अब वहां कबीर जी को ले जाकर के रामानंद जी की कुटिया के सामने खड़ा कर दिया और कहा, स्वामी जी देखो ये आ गया है वो दुल्हे का लड़का है और वहां हजारों की संख्या में बुला रखे दर्शक जिनके सामने उनकी छवि खराब हुई थी, छवि धूमिल हुई थी, उन्हीं को बुला लिया। अब रामानंद जी ने झोपड़ी के सामने कर्टेन ला रखा था पर्दा, और पर्दे से पीछे झोपड़ी से आवाज लगा रहा है कि बोल कबीर तू कौन है, तेरी क्या जाति है और तूने कैसे मुझे गुरु बताया। ऐसे आत्मा और परमात्मा का फिर संवाद होता है, वो आपको सूक्ष्म वेद की वाणी से सुनाते हैं। जैसे कल आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 17 18 तीन में आंखों देखा प्रोजेक्टर पे कि उसमें क्या लिखा है कि मंत्र 16 में वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि हे परमात्मा हे पूर्ण ब्रह्म आप अपने यथार्थ नाम का वास्तविक जो तेरा गुप्त नाम है उसका ज्ञान कराएं। मंत्र नंबर 17 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 17 में वो नाम बता रखा है कि वो परमात्मा कबीर है, कबीर देव है जो लोकोक्तियों के माध्यम से अपने यथार्थ ज्ञान को ऊंची आवाज में बोल बोल के उच्चारण करता है और वो अमर पुरुष होता है, उसका कबीर नाम है, वो कबीर देव है। और जब वो परमात्मा अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए आता है, लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान प्रचार करता है, वो शब्दावली दोहाली वो नोट कर ली जाती है, लिख ली जाती है, लिपिबद्ध कर ली जाती है। मंत्र नंबर 18 में फिर कहा है कि उस ऋषिकृत, ऋषिकृत माने वो संत, या ऋषि कहो, संत कहो, ब्राह्मण कहो, ब्राह्मण का अर्थ होता है जो परमात्मा से परिचित व्यक्ति है वो ब्राह्मण है, ऋषि वही होता है, उसी को ऋषि भी बोलते थे दूसरी भाषा में और वैसे उसको संत भी कह देते हैं। कहते हैं उस संत रूप में प्रकट जो परमात्मा यहां आता है तत्वदर्शी संत रूप में भूमिका करता है, लोकोक्तियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता है, कबीर वाणी के द्वारा वो अपना ज्ञान देता है, तो जिस कारण से उसको एक प्रसिद्ध कवि के नाम से भी संबोधित किया जाता है, प्रसिद्ध नाम कवियों की पदवी भी पाता है। और उस ऋषिकृत सहस्रणी थे हजारों की संख्या में वाणी बोली जाती है, वो उनके अनुयायी जो उस परमात्मा के शिष्य बन जाते हैं, जो उनके ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही आनंददायक होती है सवरसा, सुख यानी बहुत सुखदायी होती है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में यानी सतलोक में रहता है, वहां एक बहुत बड़े गुम्बज में विराजमान है, तेजो में शरीर है उस परमात्मा का। ये क्लियर लिखा है वेद में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 18 तक, और फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 27 30 31 ऋग्वेद ही मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 में 1 2 3 मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा अपने ऊपर धूलोक में रहता है, वहां से चलकर आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान देने के उद्देश्य से उनका अज्ञान हटाता है, उपदेश करता है, उनको ज्ञान देता है, वो यहां प्रकट होता है। अब ये वाणी जो दास आपको सुनाएगा, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो पूर्ण परमात्मा ने कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीब दास जी के अंतःकरण में उसके कंप्यूटर में ये डाउनलोड कर दी थी, फिर गरीब दास जी ने बोला था, अब सुनाते हैं।